الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل أهله خير من أن يتصدق بصاعٍ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أبي آپ کے سامنے قرآن پاک کی دعائیں تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چار ارشادات پڑھے ہوئے. پہلے میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں. عموماً بیانات کے اندر جو شروع میں پڑھا جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے ترجمے سے. ابھی خطبہ پڑھتے پڑھتے یہی خیال آیا کہ پہلے اس کا ترجمہ کر. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقود الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن جس کے ذریعے سے آگ کو جلایا جاتا ہے، دھوکایا جاتا ہے، وہ انسان ہیں اور پتھر. دنیا کی آگ کا ایندھن تو لکڑیاں ہوا کرتی، کوئلے ہوا کرتے ہیں. جہنم کی آگ جلائی جائے گی انسانوں کے ذریعے سے اور پتھروں کے ذریعے سے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. کوئی آدمی یوں سمجھتا ہو کہ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس جہنم کے اوپر باری تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں، شداد غلاظ، ایسے جو بڑے سخت گیر اور جو ہے بڑے گویا مزاج کے اعتبار سے بہت کڑک ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم. کوئی آدمی یوں سمجھتا ہو کہ کچھ ان کے ساتھ سیٹنگ کر لیں گے جیسے دنیا میں ہوتا ہے، کہا نہیں، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ان کو حکم دیا ہے، جو ڈیوٹی ان کے حوالے کی ہے، اس کی ادائیگی کے معاملے میں ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑتے نہیں ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے. اب یہ جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے وہ ابھی میں عرض کروں گا. دوسری آیت جو پڑھی سورہ فرقان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا ہے، پہچان کرائی ہے، ان کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے کون ہیں. ان میں سے ان کی ایک خوبی یہ بھی بتلائی گئی، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا. جو لوگ اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، ایک مومن ایمان والا جب اپنی اولاد کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، تو اس کا جی ٹھنڈا ہوتا ہے. گویا ان کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ان کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا. اور اللہ کا پکا اور مطیع و فرما بردار بن نہیں سکتا جب تک کہ ماں باپ کو بھی راحت پہنچانے کا اہتمام نہ کرے. ماں باپ یہ سمجھیں گے وہ تو عبادت کرتا رہے گا، ہمارے حقوق ادا نہیں. نہیں، آپ کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو وہ بھی حقیقت میں अल्लाह के हुक्म को मानने वाला नहीं है। रब्बना हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना, ये हमारे परवरदिगार तो हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा, और अल्लाह तो हमें अपने ऐसे डरने वाले नेक बंदों का सरदार बना। नेक बंदों का सरदार, हर आदमी अपने घर में सरदार होता है, वडील होता है। नेक लोगों का वडील बना, यानी मेरे घर में मेरे मातहत ये जो हैं बीवियां औलाद लड़के लड़कियां और सब पूरा खानदान, उसको तू नेक बना। जब वो नेक बनेंगे तो ये अब्बा जो हैं घर के बड़े, वो नेक लोगों के क्या कहलाएंगे? सरदार कहलाएंगे। गोया इस तरह इनके नेक बनने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला गोया आपको नेक लोगों की सरदारी अता फरमाए। और नेक लोगों की सरदारी का मिल जाना ये भी अल्लाह तआला का बहुत बड़ा इनाम है, उसकी बड़ी नवाजिश है, उसका एहसास है। ये तो ये दो आयतें थी जो मैंने पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार इरशादात भी पेश किए। पहला था, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इदा मातल इंसान इंकदाल हुआ वलू, आदमी का जब इंतकाल हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला बंद हो जाता है। अपनी सीधी सादी भाषा में बोलते हैं, मीटर बंद हो जाता है। आदमी जब तक के जिंदा है वो नेकी का सिलसिला जारी है, लेकिन मर जाएगा तो अब नेक काम कहाँ करेगा? मौत आ गई, खत्म हो गया। तो आमाल का सिलसिला चाहे नेक हो या बुरे हो, लेकिन एक मोमिन के लिए यही मुनासिब है कि नेक आमाल ही मुराद लिए जाए। इसलिए नेक आमाल का सिलसिला उसका क्या रहता है? जारी रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बंद हो जाता है। इल्ला मिन सलासती, अलबत्ता तीन चीजें ऐसी हैं, तीन आदमी ऐसे हैं कि उनका नेकी का सिलसिला मरने के बाद भी उनके नामे आमाल में नेकियों का सिलसिला जारी और बाकी रहता है। कैसे? पहला, सदकतिन जारियतिन, कोई ऐसा नेकी का काम किया जिससे लोग फायदा उठाते हैं। किसी जगह मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, कुआं खुदवा दिया, टंकी बना दी, मतलब ये एक ऐसा काम जिससे अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचता है, तो मरने के बाद भी लोग तो फायदा उठाते रहेंगे। ये मर जाएगा तो मस्जिद अपने साथ खबर में लेके तो नहीं जाएगा ना, इस मस्जिद के अंदर लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, टंकी बना दी है तो उसके पानी से लोग फायदा उठाते रहेंगे उसके दुनिया से जाने के बाद भी। तो वो जब तक लोग उसकी इस नेकी से फायदा उठा रहे हैं वहां तक उसको सवाब मिलता रहेगा। ये सदका जारिया। और इल्मी न्यूनतफा भी, या कोई इल्म की बात जिसके जरिए से फायदा उठाया जाए। आपने किसी को नमाज पढ़ने का तरीका सिखला दिया, एक आदमी फकत, तो अब आपने सिखाया ना उसको नमाज पढ़ने का तरीका, आपके सिखाने की वजह से अब नमाज पढ़ना उसको आ गया। अब जिंदगी भर जब तक वो नमाज पढ़ता रहेगा उसकी नमाज में आपका भी शेर लगा हुआ है। ये तो खुद उसके अमल की बात हुई, और अल्लाह ने अगर उसको तौफीक दी और उसने किसी दूसरे को नमाज पढ़ना सिखलाया, तो चूंकि उसको आपने सिखलाया था और वो दूसरे को सिखला रहा है, तो अब उस दूसरे को सिखलाने के अंदर भी आपका हिस्सा है। और वो दूसरा भी जब तक नमाज पढ़ता रहेगा इस दूसरे सिखलाने वाले को और आपको दोनों को सवाब मिलता रहेगा। फिर उस तीसरे ने और किसी को सिखलाया, ये सिलसिला आगे तक चलता रहे। ये तो एक की बात की थी। और अगर कोई अल्लाह का बंदा एक नहीं बीसियों को पूरी क्लास लेके बैठते हैं मौलवी साहब मदरसे के अंदर 25 बच्चों को, और उन 25 के 25 बच्चों को नमाज का तरीका सिखलाते हैं, क्या होगा? ये 25 बच्चे अपनी पूरी जिंदगी में जब तक नमाज पढ़ते रहेंगे सारा सवाब मौलवी साहब, मौलवी साहब चाहे इंतकाल करके कब्र में पहुंच गए हो लेकिन सवाब मिलता रहेगा। ये इल्मी नुतफौली या कोई किताब लिख दी और उस किताब से लोग फायदा उठा रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। अब ये फजाइल आमाल की तालीम होती है। हमारे अदर शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताबें लिखी, तकरीबन 100 साल का अरसा हो रहा है उनको लिखी हुई। जब से लिखी गई थी तब से आज तक पूरी दुनिया में हजारों आदमी रोजाना उसको पढ़ते हैं, हजारों लाखों आदमी, और फायदा उठाते हैं। इतना सवाब मिलता रहेगा, समझा है कि नहीं? इसी तरह और कोई सिलसिला आपने जारी किया तो ये इल्म की चीज है, उससे फायदा उठाया जा रहा है। आप भले दुनिया में मौजूद न हो, आपके दुनिया से जाने के बाद भी वो सिलसिला सवाब का बाकी रहेगा। तीसरी चीज अव्वलदीन सालिहीन यदूल, यानी एक औलाद जो बाप के लिए दुआ का एहतमाम करती हो। आपने नेक औलाद, बच्चा कोई बना बनाया नेक पैदा नहीं होता, सलाहियतें होती हैं कुदरत की तरफ से, उसके अंदर नेकी को हासिल करने की पूरी काबिलियत होती है। अब माँ बाप को चाहिए कि कुदरत की तरफ से उसके अंदर जो सलाहियतें रखी गई है उन सलाहियतों को इस्तेमाल करके उसको नेक बनाने की मेहनत करें। जब वो बच्चा नेक बनेगा तो वैसे भी अगर वो दुआ ना भी करे तो भी जब आपने नेक बनाया है ना माँ बाप ने, तो अब वो फायदा ही हो। और अगर माँ बाप ने नहीं बनाया, मौलवी साहब ने मेहनत की, लेकिन बच्चा तो आपका है, वो आपको थोड़ा छोड़ेगा, भूलेगा, वो माँ बाप के लिए दुआ करेगा कि भाई मेरे माँ बाप ने मुझे मौलवी साहब के हवाले किया था, वरना वो चाहते तो पता नहीं कहीं किसी मजदूरी में लगा देते, कहीं किसी जो है वो कॉन्वेंट स्कूल के अंदर डाल देते, ईसाइयों के हवाले कर देते जो मुझे तौहीद के बजाय तसलीस की तालीम देते। तो ये माँ बाप का एहसान है कि उन्होंने मदरसे में मकतब के अंदर डाला और मकतब ने मकतब में उस्ताद ने हमको ये नेकी की बातें सिखलाई। नेक बना तो हम उस नेक औलाद जो है माँ बाप को, नेक औलाद माँ बाप को कभी भूल सकती नहीं है, वो उनके लिए दुआ करेगी जरूर। और औलाद की भी नेकी का तकाजा ये है, वो साले औलाद साले उसी वक्त कहलाएगी जबकि वो माँ बाप के लिए दुआ का एहतमाम करे, उनको कभी ना भूले। ये तो बहरहाल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब आदमी के दुनिया से जाने के बाद भी चालू रहता है, मीटर चालू रहता है। कौन नहीं चाहेगा कि मेरे नामा आमाल में सवाब बढ़ता रहे। दूसरा इरशाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिह, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, निगरान है, हर एक को कुछ न कुछ अल्लाह ताला ने अमानत हवाले की है। आपको बीबी हवाले की, उससे जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चे भी अल्लाह ताला ने आपको हवाले किए, अब आपकी जिम्मेदारी है इन बच्चों को नेक बनाने की क्या करें, कोशिश करें। कल को कयामत में अल्लाह तबारक ताला के यहाँ इस औलाद के मुतालिक सवाल होगा कि हमने आपको दुनिया में एक बीवी दी थी, उससे बच्चे पैदा हुए थे, उन बीवी बच्चों को नेक बनाने के लिए, दीन पर चलाने के लिए आपने क्या मेहनत की। आप जवाब में कहेंगे बारी ताला, अरे मैंने तो बहुत बड़ी फैक्ट्री बना डाली थी कि मेरे बच्चे जो है ना रोजाना बिरयानी सरदा खाए, इतनी आमदनी होती थी उससे, और बड़ा बंगला भी बना करके आया था, उसके लिए बहुत सारी कारें और जो है सवारियों का इंतजाम किया था। बारी ताला फरमाएगा ये नहीं पूछता, उसको मेरा नेक बंदा बनाने के लिए क्या किया था ये बताओ। आज हमारी निगाहें अपनी औलाद के सिलसिले में बस बहुत महदूद, एकदम तंग निगाहें हो गई, ज्यादा दूर नजर नहीं आता, बस करीब हमारे बच्चे का कि दुनिया समझ जाए, वो जरा जो है दो पैसे कमाने लग जाए, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छी राहत वाली जिंदगी गुजारे। अरे भाई ये तो दुनिया की जिंदगी है, चंद रोजा है, उसका कोई एतबार नहीं, कोई गारंटी नहीं कब तक वो जिंदा रहता है। हमारा ईमान है हर मोमिन का कि मरने के बाद एक दूसरी जिंदगी आने वाली है जो हमेशा रहेगी, तो हमें अपना ईमान ये बतलाता है कि इस दुनिया की जिंदगी के मुकाबले में आखिरत की जिंदगी के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और कुरान में भी अल्लाह ताला ने हमको बतला दिया कि दुनिया में इसीलिए भेजा है, यहाँ दुनिया में अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं भेजा कि हम दुनिया की जिंदगी को ऐश और आराम वाला बनाएं, बल्कि इसलिए भेजा कि दुनिया में रहकर नेकियां करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें, अल्लाह के हुक्म को बजा लाएं, और इस जिंदगी के पूरा होने के बाद जब दूसरी जिंदगी आएगी तो वहाँ ऐश और आराम से गुजारें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमने तो अपनी सारी कोशिशों को जो है महदूद कर दिया, लिमिटेड कर दिया, काय के लिए, दुनिया के फायदे के लिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया के लिए उतनी मेहनत करो जितना तुमको दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतनी मेहनत करो जितना तुमको आखिरत के अंदर रहना है। अब बताओ दुनिया में कितना रहा और दुनिया के मुकाबले में आखिरत के अंदर कितना रहना है। आखिरत की जिंदगी लानिहाया, खत्म होने वाली नहीं है, शुरुआत तो तय है लेकिन खत्म होने वाली नहीं, उसका आखिरी सिरा है। और दुनिया की जिंदगी तो शुरू होकर के मौत पर खत्म हो जाए, इसलिए हमें शरीयत ये कहती है कि आप अपनी आखिरत को बनाने का फिक्र कीजिए, और दुनिया में इसीलिए भेजा, और अल्लाह ताला ने नबियों को भी इसीलिए भेजा ताकि लोगों को याद दिलाते रहे कि भाई दुनिया में आए हो, अल्लाह ने जिस काम के लिए भेजा है भूल मत जाना। दुनिया की रंगरेलियों में फंस करके आखिरत की तरफ से गाफिल मत हो जाना। ये नबी जो हैं हजरत अम्बिया ये चीज याद दिलाते हैं। आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं, आपने ये काम अब उम्मत को सौंपा, उलमा को, उम्मत को, कि अब ये लोगों को ये पैगाम पहुंचाते रहे। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि औलादुल्लुकुम राई, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है, और कुल्लुकुम मसूलुन रईयती, और तुम में से हर एक को अपनी रहियत तुम्हारे मातहत जो दी गई है। अब बाजा आदमी ऐसा होता है कि भाई अभी शादी भी नहीं हुई, अकेला और पूरी जिंदगी बगैर शादी के ही गुजार दी, तो हम यूं कह सकते हैं कि उसको अपनी जात पर तो इख्तियार है ना, बस उसका भला सोचे। शादी हुई, बीवी आई तो अपने साथ साथ बीवी, बच्चे पैदा हुए तो उन बच्चों का, इसी तरह खानदान बढ़ता जाता है और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। इन बच्चों की तालीम और तरबियत, उनको अल्लाह का नेक बंदा बनाने के लिए हमें जो मेहनतें जो कोशिशें करनी चाहिए, अल्लाह ताला ने हमको इसका पाबंद बनाया है। और कल को कयामत में इस सिलसिले में कुल्लुकुम मसूल, दूसरा सवाल है कयामत के रोज क्या होगा, सवाल होगा। अब हम तो यूं समझते हैं कि अगर बीवी बच्चों को रोटी नहीं खिलाएंगे तो सवाल होगा, होगा रोटी नहीं खिलाओगे तो सवाल होगा, ये जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। उनके रहने का इंतजाम नहीं करेंगे तो भी सवाल होगा, उनकी गर्मी सर्दी से बचाव का इंतजाम नहीं करोगे तो भी सवाल होगा। लेकिन हमने तो यूं समझाया बस ये ही तीन सवाल होंगे, नहीं, इसके बाद आगे है, इनको नेक बनाना है, अल्लाह का फरमाबरदार बनाना है। अगर इसकी भी हमने मेहनत नहीं की तो कल को कयामत में हमको इसके मुतालिक अल्लाह ताला की तरफ से पूछ होगी और अपना ये जिम्मा, ये फरीजा, ये जिम्मेदारी अदा न करने पर अल्लाह ताला की तरफ से क्या होगी, गिरफ्त होगी। इसलिए औलाद की तालीम और तरबियत की हर आदमी की जिम्मेदारी है। तीसरा इरशाद जो मैंने नकल किया, मा नहला वालिदुन मिन नहलिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन, किसी बाप ने अपनी औलाद को अच्छे आदाब से बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं दी, कोई अतिया और बख्शिश नहीं दी। हर बाप अपने औलाद को कुछ देना चाहता है। हम तो यूं समझते हैं कि हम उनको अच्छा मकान बना कर दें, अच्छी तिजारत में लगा दें, कोई दुकान चालू करके दे दें, उसके हवाले कर दें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बाप अपने औलाद को जो बेहतरीन अतिया गिफ्ट और बख्शिश दे सकता है वो ये है कि उसको अच्छे आदाब से आरास्ता करे, अच्छे आदाब सिखलाए हर चीज के, उसकी जात के, घर के माँ बाप के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, अल्लाह ताला के साथ किस तरह रहना, वो भी उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हुकूक है, उसके लिए हर एक के आदाब, अल्लाह का भी अदब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अदब है, ऐसे ही हर एक का अदब, तमाम आदाब सिखलाए, ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट है आला। बाकी आप कोई शानदार कीमती कार ला करके उसको दें ये वो गिफ्ट नहीं है, बेहतरीन बंगला बना करके उसके हवाले करें वो इस गिफ्ट का मुकाबला, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया कि सबसे शानदार गिफ्ट ये है आदाब, तो उसके बाद किसकी जरूरत है जो यूं कहे कि उसके अलावा दूसरी कोई चीज देना उसके मुकाबले में अच्छा है। और चौथा इरशाद जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आपके सामने जिक्र किया, ला युअद्दिब अर-रजुल अहलहु खैरुन मिन अन यतसद्दक बिसाई, कोई आदमी अपने घर के लोगों को, अपने बीवी बच्चों को, उनको जो उसके मातहती में है उनको अदब सिखलाए, अच्छा तरीका जिंदगी गुजारने का सिखलाए, ये एक सा अनाज सदका करने से बेहतर है। मतलब ये कि आप خیر خیرات کریں. یہاں ایک صاحب اس زمانے میں ایک صاحب صحابہ کو حاصل نہیں تھا. نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک لاکھ کا صدقہ کریں، ایک کروڑ کا صدقہ اور خیرات کریں، اس کے مقابلے میں اپنے گھر کے لوگوں کو ادب سکھلانا یہ اس سے بہتر ہے. دیکھو یہ سب قرآن کی آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کرنی چاہیے. خاص طور پر اللہ نے ہمیں جو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، جس کو ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کیا بنایا، مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی. ہر آدمی، ہر مسلمان ایمان کی دولت کو ساری چیزوں کے مقابلے میں کیا سمجھتا ہے؟ بڑھیا سمجھتا ہے. بولتا تو ہے ہی ہر ایک آدمی، کوئی آدمی بھی یہ ضرورت نہیں کر سکتا کہ اس کے خلاف بولے، اور عام طور پر دل سے بولتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی. جب ایمان جیسی دولت عطا فرمائی تب اس کے باقی رکھنے کی کیا شکلیں ہیں، اور یہ دولت ہم اپنی اولاد کو کس طرح پہنچانا، اس لیے کہ محنت کیے بغیر پہنچا سکتے نہیں. یہ اولاد کے اوپر محنت کی ضرورت ہے. آج اس زمانے میں ہماری اولاد بالکل بے یار و مددگار ہے. باپ کا سایہ، ماں کا سایہ سر پر ہونے کے باوجود یوں کہہ سکتے ہیں کہ یتیم ہے. جیسے کہ یتیم کو پوچھنے والا کوئی ہوتا نہیں، ہماری اولاد ہم کھانے پینے کا تو یہ کرتے ہیں، تفریح کا، گھمانے پھرانے کا تو انتظام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندہ بنانے کا، مومن بنانے کا، ایمان والی صفات اس کے اندر پیدا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے. یہی تو ضرورت ہے. یہ ہمارے یہاں مکاتب کا نظام ہے. آج اس نورانی مسجد کے اندر مکتب جو چل رہا ہے، جس میں یہاں اطراف کے غریب خاندانوں کے 600 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 11 مدرسین مختلف اوقات میں ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، انہی بچوں میں سے 18 بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا. یہ ناظرہ قرآن مکمل کرنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. تو ان بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کیا. یہ مکاتب جو ہے نا پورے شہر میں، مختلف علاقوں میں، اللہ کے بندے ہر جگہ ایک فکر لے کے، جیسے اس نورانی مکتب کے لیے ہمارے شبیر بھائی ہیں، بس ایک فکر سر پہ سوار لے کے چل رہے ہیں. ان کو اپنے گھر کا اتنا فکر نہیں ہے جتنا نورانی مدرسے کا ہے. جب بھی بات کریں گے تو سیدھا نورانی مدرسہ بیچ میں ایڈ کر دیں گے. یہ اللہ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی. یہ تو اس ایک مدرسے کی، شہر کے اندر جگہ جگہ اس طرح کے مکتب جاری ہیں، اور اللہ کے بندے ان مکتبوں کو چلانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں. میں آپ اس مجمع سے سوال کرتا ہوں، ہم نے کیا کوشش کی ایسے سلسلوں کو جاری رکھنے کی؟ کیا ہم کو اللہ کے یہاں کچھ لینا نہیں ہے؟ جنت میں ہمیں کچھ اونچے مرتبے حاصل نہیں کرنے ہیں؟ کرنے ہیں تو پھر ایسے بندے جو ان فکروں کو لے کر چل رہے ہیں ان کا سپورٹ کرو، ان کا ساتھ دو، ان سے پوچھو کہ بھائی یہ سلسلہ جو تم کر رہے ہو اس میں اگر ہمارے تعاون کی، ہمارے ساتھ سہکار کی ضرورت ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. آپ جب اینی ٹائم، دن یا رات کی کسی بھی گھڑی میں آپ ہمیں یاد کریں گے، ہم حاضر ہو جائیں گے. اور جو خدمت آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں، उस खिदमत को देने के लिए हम तैयार हैं। हमें तो ऐसी चीजों में हिस्सा लेना चाहिए। इतना बड़ा निजाम चलता है, अगर हम इसमें ताउन करेंगे, साथ सहकार आप करेंगे, हर महीने जो है 100 रुपये 1000 रुपये अपनी हैसियत के मुताबिक जो दे सकते हैं देंगे। तो उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाने वाली बात हो जाएगी। इतना बड़ा एक निजाम है, उसमें हमारा भी हिस्सा होगा। इसलिए भाई ये सिलसिले जो हमारे शहर में मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे हैं, और अल्लाह के बहुत से बंदे अपनी अपनी जगह पर इन सिलसिलों को लेकर चल रहे हैं, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, फिक्रें ओढ़े हुए हैं। हमको भी चाहिए कि ऐसे अल्लाह के बंदों की क्या करें, का ताउन करें उनका साथ। ये मदरसा भी जो है इसी तरह है, हम में से हर एक को इसके अंदर ताउन का एहतमाम करना चाहिए। और आज जब के इस मदरसे के 18 बच्चों को जो जिन्होंने नाजरा कुरान मुकम्मल किया है, इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह नमाज के बाद, आप वहाँ शरीक रहें। ये जो है ना, ये मजलिस जो है वो भी बड़ी बाबरकत है। ये एक सिलसिला दीन की इशात का, उसकी हौसला अफजाई है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी खिदमत और ऐसे कामों की कदरदानी की तौफीक और सआदत अता फरमाए, बल्कि हमें खुद ऐसी फिक्रें अपने सर पर ओढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।